पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। आगामी बजट में मिल सकती है महंगाई से कुछ राहत। आज से फिर शुरू हुई भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। और विश्व नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी एश बार्टी ने की अपनी उत्तराधिकारी इगा स्वेतेक की सराहना। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने वादा किया है कि मंगलवार को आने वाले बजट में ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर से जीवन जीने की कीमत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव कम किया जाएगा। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि आने वाले उपाय इस तरह से बनाए गए हैं ताकि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर दबाव ना बढ़े और रिजर्व बैंक की ब्याज दर भी ना बढ़े। SBS न्यूज के साथ हुई उनके एक साक्षात्कार में श्री फ्राइडनबर्ग ने कहा कि बढ़े हुए कमोडिटी के दाम और नौकरियों की उपलब्धता का अर्थ है कि बजट की निम्न रेखा अपेक्षाकृत बेहतर हुई है। पर साथ ही श्री फ्राइडनबर्ग ने इस बात पर भी कोई टिप्पणी करने से इनकार किया कि ईंधन पर एक्साइज कर घटाएंगे या निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कर राहत दी जाएगी या नहीं।
Well, I recognize that cost of living is the number one topic around the kitchen tables of Australians right now. And foremost in their mind is what's happening to petrol prices. At more than $2 a litre, that's really stretching household budgets. So we will have cost of living relief in Tuesday night's budget. It will be temporary, it will be targeted, it will be proportionate, and it will help deal with some of those pressures that Australian families face right now.
पर लेबर के कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने ABC से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग दरअसल 10 साल तक गठबंधन की विफल योजनाओं का नतीजा है।
No amount of money sprayed around on the eve of an election will make Australians forget a decade of attacks on wages and job security. That is a big part of the reason why Australians have been under these cost of living pressures. It didn't just show up in the last few weeks. The cost of living pressures faced by Australian families didn't show up when Russia invaded Ukraine. They showed up when the coalition attacked wages and take-home pay. Nothing on Tuesday night will change that fundamental reality.
Australia Border Suraksha Bal ka kehna hai ki ve Sydney ke immigration detention mein 2 saal se reh rahe ek vyakti ki mrityu ki jaanch kar rahi hai. Abhivakta Samuh Refugee Action Coalition का कहना है कि ये व्यक्ति ईरानियन थे जो ऑस्ट्रेलिया में शरण चाहते थे। अपने 30 के दशक में यह व्यक्ति विलावुड इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के अपने कमरे में कल दोपहर मृत पाए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई बॉर्डर सुरक्षा बल ने इस बात की पुष्टि की है कि बीती दोपहर विलावुड में एक पुरुष निवासी की मृत्यु हुई है। सुरक्षा बल का कहना है कि जाँच के लिए उपयुक्त एजेंसियों को मामला सौंप दिया गया है। इसमें न्यू साउथ वेल्स कोरोनर भी शामिल है। साथ ही उनके वक्तव्य में कहा गया कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। विभाग ने मृतक के परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। दूसरी ओर रेफ्यूजी एक्शन कोएलिशन का कहना है कि इस व्यक्ति की मृत्यु से यह साफ दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया की सख्त प्रवासी नीतियों का शरणार्थियों और रेफ्यूजियों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। वहीं देश में कोरोना की परिस्थिति की बात करें तो विक्टोरिया में आज 7,466 नए कोरोना मामले और 5 कोरोना मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में 260 लोग कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स ने 17,450 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में एक कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई है। वहीं इस बीमारी के चलते 1,171 न्यू साउथ वेल्स निवासी अस्पताल में भर्ती हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सदा के लिए सत्ता में नहीं रह सकते हैं। वे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर भाषण दे रहे थे। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह बयान पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में दिया। व्हाइट हाउस ने बाद में इस बात की सफाई दी कि श्री बाइडेन रूस में सत्ता पलट का इशारा नहीं कर रहे थे। एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति के कहने का अर्थ यह था कि श्री पुतिन को इस तरह से अपने पड़ोसियों पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करने दिया जा सकता है। अपने भाषण के दौरान श्री बाइडेन ने रूस के यूक्रेन के इस युद्ध को श्री पुतिन की बड़ी हार बताया है।
यूक्रेन विल नेवर बी अ विक्ट्री फॉर रशिया फॉर फ्री पीपल रिफ्यूज्ड टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ होपलेसनेस एंड डार्कनेस। We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power.
पश्चिमी यूक्रेन में लिवीव शहर के मेयर ने ये सुझाया है कि उनके शहर पर होने वाले रूसी हवाई हमले दरअसल अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चेतावनी थे। कम से कम 4 रूसी रॉकेटों ने लिवीव के एक सैन्य व्यवस्था और तेल फैक्ट्री को निशाना बनाया है। ये शहर अब तक हजारों लाखों यूक्रेनियाई लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बना हुआ था। ये हमले तब हुए जब अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शहर से कुल 70 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सॉ में थे। ये हमले शनिवार को आए रूसी वक्तव्य कि वह अब पूर्वी यूक्रेन में अपने प्रयास तेज करेगा का भी विरोधाभास थे। लिवीव के मेयर एंड्री सिदोवी ने बेहतर हथियारों के साथ एंटी मिसाइल तकनीक की भी मांग की है ताकि यूक्रेनियाई शहरों और मूलभूत ढांचे को बचाया जा सके।
I think that with today's strikes, the aggressor wanted to say hello to President Biden, who is now in Poland, while Lviv is 70 kilometers away from Poland. I think the entire world must understand that the threat is extremely serious.
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार की है कि वे उनके देश को लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करें ताकि रूस के विरुद्ध उनके संघर्ष में सहायता मिल सके। ये बयान तब आया है जब रूस ने यूक्रेनियाई शहर लवीव पर तब हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति लवीव से कुल 70 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सॉ में यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। अपने नए वीडियो वक्तव्य में श्री व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने मारियोपोल शहर की रक्षा कर रहे यूक्रेनियाई सैन्य बल से बात की है और वे चाहते हैं कि उनके पश्चिमी साझेदार उस सैन्य बल का कम से कम 1% साहस ही दिखा दें।
The responsible states, in particular the state of Qatar, you are reliable and reputable suppliers of energy sources, and you can contribute to stabilizing the situation in Europe. There is much that can be done to restore justice. The future of Europe depends on your efforts. I urge you to increase energy production to make Russia understand that no state should use energy as a weapon and to blackmail the world.
Pakistan ki mahila adhikar abhivakta aur नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई ने अफगानिस्तान में तालिबान के लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने पर रोक लगाने की खिलाफत की है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने वादे से पीछे हटते हुए 6ठी कक्षा से ऊपर में लड़कियों को पढ़ने पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। माना जा रहा है कि यह फैसला पार्टी के कट्टरवादी हिस्सों को खुश करने के लिए लिया गया है। इससे तालिबान के महिलाओं के प्रति रवैये में सुधार की सारी गुंजाइश भी खत्म होती नजर आ रही है। इसके बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय राहत सहायता भी आना मुश्किल हो सकता है। कतर में दोहा फोरम से बात करते हुए सुश्री यूसुफजाई ने कहा कि
They were waiting outside their schools, but the gates were closed and they were crying. They were crying to media, they were crying to their parents that why is it happening to them? Just because they're girls, why can't they be studying? Why can't they be learning? Why can't they be receiving their education?
और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना के मामले घटकर 1500 से कम रह गए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1421 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले कोरोना के 1660 नए मामले सामने आए थे। वहीं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण 139 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हालांकि इस आंकड़े में केरल में हुई 138 मौतों का बैकलॉग जोड़ा गया है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 16,187 रह गई है। देश में सक्रिय मामले अब कुल मामलों का सिर्फ 0.04% ही रह गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक भारत में 183.20 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वहीं कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगी पाबंदियों की वजह से 2 साल तक बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन आज से फिर शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासी तेजी आएगी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 23 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि कुछ देशों के साथ बायो बबल व्यवस्था के तहत कोरोना काल में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती रही हैं, लेकिन वह एक सीमित व्यवस्था रही है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को एक खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.34 रुपये, जबकि एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 75 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। रिटायर होने वाली विश्व नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी एश बार्टी ने अपनी उत्तराधिकारी और मित्र पोलैंड की ईगा स्वायातेक की सराहना की है। स्वायातेक विश्व स्तर पर 28वीं और अपने देश से पहली महिला हैं जो WTA रैंकिंग्स के शीर्ष पर पहुंची हैं। उन्होंने यह मकाम मायमी ओपन के दौरान दूसरे चरण में विक्टोरिया गोलुबिक को हराकर हासिल किया था। 20 वर्षीय स्वायातेक ने बार्टी का स्थान तब पाया जब पिछले सप्ताह अचानक ही ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। और अंत में एक नज़र कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल हल्की बरसात हो सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में धूप छाव का मौसम रह सकता है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल हल्की बरसात की आशंका बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में रुक कर बारिश के साथ तूफान की आशंका बताई गई है। अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।